मूसा अलैहि सलाम का जो वाक्या है वो चल रहा है कि मूसा अलैहि सलाम जो हैं वो 40 दिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास गए हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाया है। वो कोहे तूर पर गए हैं और कौम पहाड़ के नीचे मैदानों राह में ठहरी हुई थी। और यहां पर आप ये बात याद रखें कि बनी इसराइल के लोग जो हैं, मूसा अलैहि सलाम इन्हें मिस्र से लेकर निकले हैं, और मिस्र में गाय की परस्तिश जो थी वो आम थी, और बनी इसराइल के लोग बड़ी शिद्दत के साथ इससे मुतासिर हो चुके थे। आप पीछे सूरत अल बकरा में पढ़ चुके हैं, वह उश्रिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, के इनके दिलों में बछड़ा बस कर रह गया था। और सबसे ज्यादा हैरत का मकाम यह है कि अभी मिस्र से निकले हुए इनको सिर्फ 3 महीने गुजरे थे, समंदर का फटना, फिरौन का गरक होना, और बनी इसराइल का जो है वो समंदर के अंदर से आराम से खैरियत से निकल कर आ जाना। और खास तौर पर बनी इसराइल जो के फिरौन के गुलाम थे, और वो गुलामी का जो बंद टूट गया, जिसकी कोई टूटने की उम्मीद नजर नहीं आती थी। तो ये सारे वाकयात अभी ताजे ताजे थे, 3 महीने हुए थे, और उन्हें खूब पता था कि ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत से हुआ, लेकिन फिर भी ये ऐसी बेवफा कौम थी कि इन्होंने जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया था कि हमें जो है वो एक बुत बना दें। आपने पीछे पढ़ा है आयत 138 में कि रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक कौम को देखा कि वो चंद बुतों की गिरविदा बनी हुई थी, उनकी परस्तिश कर रही थी। तो इन्होंने भी मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, पालू या मूसा जल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कि ए मूसा हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। इन्होंने ये मुतालबा किया था, मूसा अलैहि सलाम ने उनको समझाया था कि बड़ी नादानी की अजीब बात करते हो, तो अब आजाद हो गए हो तो अब तो अल्लाह की बंदगी करनी है, एक अल्लाह की बंदगी करनी है। और अल्लाह ताला ने उनको ऊपर कोहे तूर पर बुला लिया। अब पीछे से कौम का हाल क्या हुआ, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कौम पर नायब बना कर गए थे। वत्ता खजा कौम मूसा मिन बाद ही मिन हुलियहिम इजलन जसदन, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे इनकी कौम ने वत्ता खजा पकड़ लिया, कौम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बना लिया, मिन बाद ही मूसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या बनाया, मिन हुलियहिम, अपने जेवर से। हुलियहिम जो है इसका लफ्ज जो है हालाम या इसका रूट है, और हिलिया जेवर पहनाना, जेवर के लिए हिलिया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने जेवर से जो है बना लिया इजलन, एक बछड़ा। आप पढ़ चुकी हैं कि आयन जीम लाम जो है उजलत से है, जल्दबाजी, किसी चीज को उसके मुनासिब वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करना। और इजल जो है ये गाय के बच्चे को कहते हैं, बछड़े को, कि वो पैदा होते ही फौरन तेजी से दूध पीने की कोशिश करता है, और जल्दी जल्दी फुर्ती से वो दूध पीने की कोशिश करता है, भागता है, तो उसको इजल कहा जाता है उसकी फुर्ती की वजह से। तो इन्होंने भी क्या किया कि बनी इसराइल के लोगों ने एक जो उनके जेवर थे तो उसका बछड़ा जो है बछड़ा बनाया, इजलन बछड़ा, जसदन पुतला, जीम सीन दाल जो है ये जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसमें खून बिल्कुल खुश्क हो चुका हो, जैसे जस्दे खाकी भी हम बोलते हैं ना, तो ऐसा जिस्म जिसमें खून खुश्क हो चुका हो। तो उन्होंने बछड़े का एक पुतला बनाया, एक जसद बनाया, लहू खुआर, लहू उसमें से खुआर गाय की सी आवाज निकलती थी। खुआर जो है इसका रूट है खा वो रा, और कुरान मजीद में आवाजों के लिए 20 लफ्ज आए हैं, 12 जानदारों की आवाजों के लिए आए हैं और 8 जो है बेजान चीजों की आवाजों के आए हैं। तो इस तरह 20 लफ्ज कुरान में आवाज के लिए आए हैं। और ये जो ख्वार है 20 में से ये इसका नामा दर्जा है, और ये कहते हैं गाय बैल या बछड़े की आवाज। अब जो उन्होंने जेवरों में से जो है वो एक बछड़े का जिस्म जो बनाया, उसका पुतला बनाया, तो उसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं क्या उन्हें नजर नहीं आता था कि वो बछड़ा ना उनसे बातें करता है, ना बोलता है, और ना किसी मामले में उन्हें रहनुमाई करता है। वला यहदीहिम सबीला, और ना ही उन्हें रास्ता दिखाता है। तो खवार का लफ्ज जो है आवाज का निकलना, जैसे एक आवाज किसी निकलती थी, और वो आवाज जो थी क्या था कि ये लफ्ज बैल के डकरने की आवाज के लिए भी आता है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि बनी इसराइल की बेअकली, नाकदरी, उनकी बेवकूफी, जहालत को देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं उनके लिए अल्लाह के पास से हदायत लेने के लिए, और इन्होंने पैगंबर के पीठ मोड़ते ही खुद एक मस्नूई खुदा बना डाला। और यही वो हरकत है जिस पर बाज अंबियाए बनी इसराइल ने अपनी कौम को उस बदकार औरत से तशबीह दी है जो अपने शोहर के सिवा हर दूसरे मर्द से दिल लगाती हो और पहली रात में भी बेवफाई से ना चूकी हो। तो अब यहाँ पे यही बात जो है वो बताई जा रही है, इत्तखज़ूहू वकानू ज़ालिमीन, बना लिया उन्होंने इसको, यानी उन्होंने ये जो है वो जेवर से एक बछड़े का पुतला बना लिया और उसको खुदा बना लिया, उसकी पूजा करने लगे। वकानू ज़ालिमीन, और थे वो जुल्म करने वाले। और ये कैसे थे कि ये जालिम थे कि अल्लाह ने मिस्र की गुलामी से बचाया था, अल्लाह ने सारे मोजात इन्हें दिखाए थे, अहले मिस्र की गुलामी से बचाया, फिरौन की गुलामी से, और सारे मोजात दिखाकर यहां तक अल्लाह इन्हें लाया था, और फिर ये शिर्क करने लगे। व कानू ज़ालिमीन वलम्मा सुकिता फी अईदीहिम, वलम्मा सुकिता फी अईदीहिम, और जब वो शर्मिंदा हुए अपने ही हाथों में। असल में सुकिता फी अईदीहिम ये अरबी मुहावरा है, इसके मानी है नदामत होना, शर्मिंदा होना। तो इन्हें ये कब नदामत हुई, इसकी तफसील आप सूरह ताहा में पढ़ेंगी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर इनको डांटा, इनको जो है वो समझाया, तो ये बहुत ही शर्मिंदा हुए। वैसे सकता का लफ्ज होता है ना कि जिसके मानी होते हैं कि किसी चीज का गिर जाना, तो सुकिता फी अईदीहिम जैसे हाथों में गिर गए। तो यहाँ पे आप लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगी, बल्कि इसका, क्योंकि ये एक मुहावरा है अरबी जबान का, तो इसके मानी बयान किए जाते हैं नदामत के, शर्मिंदगी के, गलती पर मुतनब्बे हो जाना। तो अब जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये अपने ही हाथों नादिम हुए, यानी खुद ही सोचा और फिर जो है इन्हें अफसोस हुआ, वरऊ अन्नहुम कद्दलू, और उन्होंने देखा कि वो तहकी गुमराह हो गए थे। कालू, वो कहने लगे, ला इल्लम यरहमना रब्बुना, अगर रहम ना किया हम पर हमारे परवरदिगार ने, वयग़फिर लना, और हमें अगर वो नहीं बख्शेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम जो है वो घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अब जो है इन्हें जो है वो अपनी गलती का एहसास हुआ, और इन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अगर तूने हम पर रहम ना किया और तूने अगर हमें माफ ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। लनकूनन्ना में दो ताकीद आई हैं, लाम लामे ताकीद है, और नून पर जो शद है ना वो भी ताकीद के लिए आया है कि हम जरूर बजरूर हो जाएंगे खसारा पाने वालों में। अल खासिर जो है ना वाहिद है, अल खासिरीन इसकी जमा है, तो हम बर्बाद होने वालों में से हो जाएंगे। मुफलिहून का ओपोजिट है ये खासिरून या खासिरीन। वलम्मा रजा मूसा ले कौम ही, उधर से मूसा अलैहि इस्लाम जो है वो अपनी कौम की तरफ लौटे। वो कहाँ गए हुए थे, वो अल्लाह के पास गए हुए थे हदायात लेने के लिए, वो 40 दिन के लिए गए थे। तो जब वो वापस आए, गदबाना असिफा, गदबाना असिफा, तो वो बहुत गुस्से में थे, असिफा अफसोस की हालत में। अब वो क्यों गुस्से में थे और वो क्यों अफसोस में थे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए उन्हें बता दिया ए मूसा, क्योंकि वो अल्लाह ताला से तो हम कलाम हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया कि ए मूसा तेरी कौम जो है वो पीछे से बछड़े की इबादत करने लगी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ही गुस्से में, गदबान जो है ना ये फौलान के वजन पर है और ये मुबालगे का सीगा है, जैसे अर्रहमान, रहमान जो है ये भी मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। इसी तरह गदबान, बहुत ज्यादा गुस्से में। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो इस वजन पर आपने एक और लफ्ज भी पढ़ा था, याद है आपने क्या पढ़ा था? गुफरान भी पढ़ा था ना, गुफरान का लफ्ज। तो ये भी जो है वो मुबालगे का सीगा है। आपने पढ़ा था ये सूरत अल बकरा में आयत नंबर 285 में, गुफरान का रब्बना व इलैकल मसीर। तो यहाँ पे भी गदबान असिफा, तो हमजा से इनफा जो है ये अफसोस के लिए आता है, तासुफ के लिए भी आप बोलती हैं, तो सेम वही बात है कि अफसोस। तो एक तरफ उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा था, गुस्सा किस बात पे था? इसलिए कि कौम जो थी वो क्या कर रही थी? शिर्क कर रही थी। असेफा अफसोस किस बात का था? कि जो है वो कौम के अंदर जो है वो जरा भी दीनी हमीयत नहीं थी, गैरत नहीं थी कि इतना भी वो लोग इंतजार ना कर सके कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करते कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास हदायत लेकर आने वाले हैं। तो गदबान असिफा, अफसोस भी था और उसके साथ जो है वो उन्हें गुस्सा भी था। और दूसरी तरफ वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जो है वो जानशीन मुकरर करके गए थे, तो उन्हें जो है वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर भी गुस्सा था। कहने लगे काला बेसमा खलफ तुमूनी मिम्बादी, बेसमा कितनी बुरी है जो खलफ तुमूनी तुमने जानशीनी की, मिम्बादी मेरे बाद, कि तुमने मेरे बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा कौम का, और कौम जो है ये शिर्क क्यों करने लग गई, तुमने मेरे बाद बड़ी गलत जानशीनी की। आजिल तुम अमर रब्बिकुम, आजिल तुम, क्या तुमने उजलत की, क्या तुमने जल्दबाजी की, अमरा रब्बिकुम अपने रब के हुक्म के बारे में। तो अमरा रब्बिकुम जो है इसके मानी क्या है कि कबल इसके कि अल्लाह ये बताए कि इसकी इबादत का तरीका क्या है, और यही बताने के लिए तो अल्लाह ने मुझे पहाड़ पर बुलाया था, तो तुमने सबकत करके उजलत करके खुद इबादत का एक तरीका इजाद कर लिया, और तुमने ये सोच लिया कि हमें जो है वो अल्लाह के तरीके की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है ना आजिल तुम अमरा रब्बिकुम, इसमें इस्तफाम है, ये जो सवाल या अंदाज है ये मलामत के लिए है, ये सरजनश के लिए है। वह अलकल अलवाहा, और मूसा अलैहि सलाम ने अपनी तख्तियां फेंक दी, अलका डाल दी। वह अखजा बिरा से अखी, और पकड़ लिया अपने भाई के सर को, रास जो है ये सर को कहते हैं, यजुर्रहु इलैह, और उन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे। यजुर्रहु जो है इसका रूट है जीम रा, खींचने के लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं, इसका दूसरा दर्जा है। इसके मानी होते हैं किसी को जमीन पर खींचना और घसीटना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को उनको उनके सर से पकड़ा, और सर से पकड़कर उनके बालों से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच रहे थे, घसीट रहे थे। कालिब न उम्मा इन्नल कौम अस्तदअफूनी वकादू यक्तुलूननी। अब जो है हजरत हारून अलैहिस्सलाम बोलते हैं और कहते हैं इब्न उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे, ए मेरी ए माँ जाए। अब देखें हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों जो हैं वो सगे भाई हैं, इसलिए हारून अलैहिस्सलाम माँ जाए कहते हैं, क्योंकि अब ये भी तो कह सकते थे ना कि ए मेरे भाई, तो मेरे भाई कहने की बजाय उन्होंने जो है वो कहा इब्न उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे, तो या अखी कहने की बजाय इब्न उम्मा जो कहा, इसमें शफकत है, इसमें नरमी है, प्यार है। कहा कि इस्तदअफूनी, तो इस्तदअफूनी जो है इसके मानी है कि उन्होंने कमजोर समझा मुझको। अलिफ सीन ता, नून सीन ता, या सीन ता, इसका मतलब होता है कुछ मांगना, कुछ कुछ चाहना, जैसे होता है ना इस्तखारा, खैर तलब करना, तो इसी तरह से इस्तदफूनी कि इन्होंने तलब किया मुझको कमजोर, यानी इन्होंने मुझे कमजोर समझा। वकादू और करीब था, काफ वो दाल इसका रूट है, और करीब था यक्तुलूननी कि वो मुझे कत्ल कर डालते, मुझे मार ही डालते। इससे क्या बात पता चलती है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम जब ये बात कहते हैं कि करीब था कि वो मुझे कत्ल कर देते और उन्होंने मुझे बहुत कमजोर समझ लिया, इससे क्या बात पता चलती है कि मैं अकेला था, मेरी कौम ने मुझे दबा लिया। और मैंने इसका ये मतलब है कि हारून अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि कौम जो है वो शिर्क ना करे, फितने में मुब्तिला ना हो, लेकिन कौम की भारी अक्सरियत थी, और वो खुद उनके साथ चंद लोग थे, वो अकेले थे, वो कितने लोग थे अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन क्या है कि ताकत के जोर से वो उनको रोक नहीं सकते थे कौम के लोगों को। इसलिए उन्होंने कहा कि इस्तदअफूनी के कौम ने मुझे दबा लिया, वकादू यक्तुलूननी और करीब था कि मुझे मार डालते। और जो है वो फिर कहते हैं फला तुष्मित बी अल आदा, तुष्मित जो है ये आपके लिए बिल्कुल नया लफ्ज है, और इसका आप रूट याद कर लें, शीन मीम ता। इसके मानी होते हैं कि किसी की मुसीबत पर हंसना और दूसरे का आपकी मुसीबत पर खुश होना, यानी जैसे एक आप किसी की मुसीबत पर खुश होते हैं, कोई आपकी मुसीबत पर खुश हो, तो दुश्मन का खुश होना किसी की मुसीबत पर। तो इशमात जो है दुश्मन को खुश करने हंसाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहा कि फला तुष्मित बी अल आदा, बस दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे, तुष्मित यानी मेरी जग हंसाई ना कर कि लोग मुझ पर जो है वो हंस रहे हैं, बस ना खुश कर दिया मुझ पर अल आदा दुश्मनों को। तो अदू एक दुश्मन को कहते हैं और अल आदा बहुत से दुश्मनों को। फला तजअलनी मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, और ना कर मुझको साथ जालिम कौम के, यानी ये जो शिर्क करने वाले हैं मेरे भाई, तो मुझे इन पर इनके साथ ना मिला ले। काला रब्बि ग़फ़िरली वले अखी, अब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया और अल्लाह से दुआ करने लगे कि ए मेरे रब इग़फ़िरली, बख्श दे मुझको, वले अखी और मेरे भाई को भी माफ कर दे, वादखिलना फी रहमतिका और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, व अंत अरहमुर राहिमीन और तू जो है सबसे बढ़कर रहीम है, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के उजर को कबूल कर लिया। इससे क्या बात पता चलती है कि जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर उससे पूछगिछ भी करनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनाया था, कमी बेशी हो गई तो मुहासबा किया, और जब मुहासबा हो तो उस वक्त लड़ने झगड़ने की बजाय जो है वो क्या करना चाहिए, अपनी जो भी कोशिश की हो, जो भी काम किया हो, उसके बारे में बताना चाहिए, तो इस अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। हारून अलैहिस्सलाम ने जो हकीकत थी उनके सामने रखी, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने हारून के उजर को कबूल कर लिया, अपने लिए और अपने भाई के लिए जो है वो दुआ की, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह से मगफरत की दुआ मांगी। और सही अदब भी यही है कि फिर अल्लाह से गलतियों की माफी मांगनी चाहिए कि मुझे भी और मेरे भाई को जो है वो अपनी रहमत से ढांप ले। तो आप देख लीजिए कि बनी इसराइल का पहला पहली जो गलती थी, पहली गुमराही आप पढ़ चुकी हैं कि उन्होंने बछड़े का मुताल, उन्होंने कहा था कि हमें भी कोई बुत बनाकर दिया जाए, आयत नंबर 138 में आपने पढ़ा था। अब यहां पे दूसरी उनकी बड़ी गलती क्या कि उन्होंने खुद ही बुत बना लिया। फिर इसके बाद जो है अब जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है ना इरशाद हुआ, इन अल्लज़ीन नत्तखज़ुल इजला, कि बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे। सा के मानी होते हैं करीब, यनालुहुम जो है इसका रूट है नून या लाम, इसका मतलब है पा लेना, जैसे मुराद को पहुंचना। सयनालुहुम वो जरूर पहुंचेंगे, अनकरीब वो पाएंगे, गदबों में रब्बेहिम अपने रब के गुस्से को, यानी यहां पर जो है ना जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी अब उन पर जो है इलाही की वईद है, धमकी है कि दुनिया ही में उन्हें जो है ना क्या होगा कि उन्हें वजिल्लतुन फिल हयाती दुनिया, और दुनिया की जिंदगी में उन्हें जिल्लत मिलेगी। वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे, अल्लाह की नाराजगी में गिरफ्तार होंगे। वजिल्लतुन फिल हयाती दुनिया, और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। वकजालिक नजिल मुफ्तरीन, और झूठ गढ़ने वाले को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। तो मुफ्तरीन जो है, ये आप पहले भी ये लफ्ज जो है ये पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी होते हैं कि झूठ घड़ना, इफ्तरा करना, और इसके लफ्जी मानी है कि चमड़े को जो है वो काटना कि उसको सिया जाए ठीक करने के लिए, लेकिन फिर उसको जो है वो खराब कर दिया जाए। तो अब यहां पर भी यही बात, मुफ्तरीन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और इसके मानी क्या है?